करने। और फिर माला की प्रशंसा करने लगे कि माला तूने कौन सा सब पुण्य किया। बार बार श्याम सुंदर के बगल में फेंक में लगी हुई मुरली की ओर देख रही है, कह रही है श्याम सुंदर इस बार मुरली को दांत पे लगाओ ना। पर यदि श्याम सुंदर मुरली को दांत पे लगाए और प्रिया चौपर खेलते हुए चौपर को में मुरली को जीत ले, श्री ललिता मुरली को हाथ में लेकर के उस समय किशोरी जी को दें और किशोरी उस मुरली से कहने लगे कि अरे मुरली सदवंश में तेरा जन्म हुआ, तू श्याम सुंदर के श्री हस्त पर पालित हुई, परंतु तूने ये दुर्गुण कहां से सीखा कि हम कुल रमणियों के कुल की मर्यादा का ही धैर्य का ही तू हरण करने वाली हो गई। क्वचित अपित कथा में किंकरीणा, कभी उन सारे प्रसंगों को प्रसंग में भी जब चौपा पास खेल रहे होंगे मथुरा में उस समय भी कहते हैं कि नहीं कि जैसे तुम्हारे साथ में चौपर के दाव लगते थे लगते हैं ऐसे पहले ब्रज में भी कभी दाव लगते थे, जैसे तुम पहेली पूछती हो ऐसे कभी ब्रज में भी श्री तुंग विद्या जी सुंदर सुंदर पहेलियां पूछती थी, जैसे तुम श्रृंगार करती हो ऐसे कभी हमारे ब्रज में भी अपूर्व से श्रृंगार था, जैसे तुम में संगीत है ऐसे श्री राधिका भी अपूर्ण रूप से कभी मधुर स्वर में संगीत का गायन करती थी, जहां पर स्वर जाति अमिश्रता उनने पूछता तेनो प्रियता साध्य साध्य थी, सब मिलकर के गायन कर रही हैं और श्री प्रियागणों के कंठ से अमिश्रित स्वर जाति जहां पर प्रकट हो रही हैं, जहां पर सुंदर श्रुतियां उन श्रुतियों का सुव्यवस्थित जो क्रम वही स्वर के रूप में प्रकट हो, वे स्वर ही कहीं अपने सुव्यवस्थित क्रम में ग्राम के रूप में प्रकट हो और उन ग्रामों के मध्य में ही स्वरों का जो सुव्यवस्थित क्रम है वो जाति रूप में प्रकट हो और वे जाति ही कहीं मधुर स्वर में राग रूप में प्रकट हो और उनके द्वारा अनंत अनंत राग प्रकट होते हुए जहां पर विराजमान हो, तो काचित समम कुन्नेनो स्वर जाति अमिश्रता अमिश्रित स्वर जाति जगत के जितने भी गायक गायिका उनके कंठ कफ आदि दोषों से युक्त है, परंतु मेरे ब्रज में अरीर राजकुमारियों अरे राजमहेशियों राजकुमारियों से कभी वे कहते हैं कि नहीं कि श्री ललिता जी के कंठ से अमिश्रित स्वर जाति प्रकट होती थी, ऐसे स्वर प्रकट होते थे जो बिल्कुल शुद्ध थे, जगत में किसी दूसरी गायिका के दूसरी गायिका के कंठ से जो स्वर प्रकट नहीं हो सकते हैं वे स्वर राख में प्रकट होते थे, स्वर जाति अमिश्रित। श्याम सुंदर गायन कर रहे हैं, ललिता जी कह रही हैं श्याम सुंदर क्या धीरे धीरे गायन कर रहे हो, जरा खुल करके गायन करो। श्याम सुंदर ने जिस श्रुति को आधार बना करके गायन करना प्रारंभ किया था श्री विशाखा श्याम सुंदर की उस श्रुति में ही अपनी श्रुति को मिलाकर के जिस समय मधुर स्वर में गायन कर रही है काचित समम मुकुंदेनो काचित श्री विशाखा समम मुकुंदेन श्याम सुंदर के साथ में स्वर जाति अमिश्रता उन्निंदे श्याम सुंदर स्वर गाते हुए एक स्वर को एक राग को जहां तक उठाकर के ले गए, आरोह करते हुए आपने जितना ऊंचा उठाया श्री विशाखा ने श्याम सुंदर के साथ में स्वर मिलाकर के उन्निंदे उसे और ऊंचा उठाया। सामान्यतः एक गायक के कंठ से अधिक से अधिक 66 श्रुतियां प्रकट हो सकती हैं, 3 ग्राम है और 22 ग्रामों के 22 श्रुतियों का एक एक ग्राम है, 4.5 श्रुति है रे में, 4 श्रुति है गा जो है उसमें 2 श्रुति है, इस तरह से 22 श्रुतियां हैं कुल मिलाकर के एक ग्राम में और 3 ग्राम है, 4 सप्तक मध्य सप्तक और मंद सप्तक 3 ग्राम है, तो अधिक से अधिक एक गायिका के मुख से 66 श्रुतियां प्रकट हो सकती हैं, इसके आगे की जो श्रुतियां हैं वे न तो गायन की जा सकती हैं न श्रुतगोचर हो सकती हैं, परंतु श्री श्याम सुंदर और श्री प्रियारायण के द्वारा पुण्य 66 नहीं न जाने कितनी सहस्त्र श्रुतियां गायन हो गई प्रकट हो रही है। यहां पर कहीं भी कोई ये नहीं है कि ऊपर ले जाकर के बस की हो जाए या नीचे आकर के बह हो जाए, ऐसा नहीं है। यहां पर उन्मिंग कोई भी स्वर कोई भी श्रुति कहां, और वो भी स्वर जाति अमिश्रता अमिश्रित जो स्वर जाति है वे अमिश्रित स्वर जाति प्रकट होती हुई चली जा रही है, और परम मधुर रूप में जो स्वर जातियां विराजमान है। विशाखा जी जितने ऊंचे उठाकर के ले जाए श्याम सुंदर की सामर्थ्य नहीं, झिझक गए, बड़े गबीजा के साथ में कैसे गाएं, श्री विशाखा जी के साथ में आप गा नहीं सके हैं, चुप हो गए हैं। श्री ललिता ने विशाखा का साथ दिया और विशाखा श्रुति को जितनी ऊंची श्रुतियों के उस क्रम को स्वर के उस क्रम को जितना ऊंचा उठा करके ले गई थी। मंद शुद्ध और तार इनमें तीव्र स्वरों के तीनों भेदों को प्रकट करती हुई श्रुति जहां गायन को जितना ऊंचा उठा करके ले गई, श्री ललिता ने विशाखा के स्वर में स्वर मिलाकर के उन्मिन्य पूजता तेनो प्रियता साधती तदेव ध्रुव मिन्मिन्य, जो अन्य ताल में निबद्ध था उसको ही ऊंचा उठा करके फिर से ध्रुव ताल में निबद्ध कर दिया। किसी दूसरे ताल का जो गायन था उसको ध्रुव ताल में निबद्ध कर दिया। तस्य मानम तो बभदा श्याम सुंदर तो वाह वाह अहो अहो कहकर के अपनी माला श्री ललिता जी को धारण करा रहे हैं, श्री विशाखा जी को अपना पटका धारण करा रहे हैं। उन्मिन्य पूजता तेनो प्रियता साधु साधुती तदेव ध्रुव मिन्मिन्य तस्य मानम तो बभदा। अब ललिता जिस तार सप्तक के भी ऊपर ले जाकर के जहां गायन कर रही है, कौन की सामर्थ्य, श्री किशोरी जी मन में विचार करें बोले तो कहीं ऐसा न हो कि ये बनी बनाया पूरी की पूरी गोष्ठी यहां ही बीच में खंडित हो जाए। श्री स्वामिनी ने उस समय गाना प्रारंभ किया और अपनी दोनों सखी श्री ललिता विशाखा इनके स्वर में स्वर मिलाते हुए पहले तो ऊपर ले गई और ऊपर ले जाकर के अवरोह करती हुई ला करके ठीक उसी श्रुति पर उस गायन को अवस्थित कर दिया जहां से श्याम सुंदर ने गायन प्रारंभ किया था। और श्याम सुंदर से भी इशारा किया, जितनी भी सखी गए हैं उनसे भी इशारा किया कि सब गायन करो, और सब उस समय सब मिलकर के जहां समूह गान का संकेत किया है सब मिलकर के अपूर्व रूप से गायन कर रही है। ऐसे जब जीते मेघमावृतम उन गोपिकागणों के द्वारा गायन उसके द्वारा सारा विश्व भर गया है। श्री किशोरी जी उसी लीला का स्मरण करते हुए कह रही हैं कि क्वचित अपि च कथामनः किंकरीणाम, कि हम किंकरियों की वो जो गायन की कला थी उस गायन कला का भी कभी वे वहां मथुरा की संगीतकारा उन रानियों के बीच में कभी चर्चा करते हैं कि नहीं, कि जैसे तुम में चित्राम है ऐसी चित्रकला श्री ललिता आदि में जितनी भी सखी गए हैं श्री रूपमंजरी उनमें भी अपूर्ण रूप से वो चित्रांग विराजमान। मध्य श्री प्रातकालीन लीला में श्री विशाखा जी श्री किशोरी जी जो है उनके कपोलों के ऊपर श्री अंग के ऊपर चित्र जो है चित्र की रचना करती हुई विराजमान होती है प्रातकालीन लीला ध्यान में, तो जहां पर कभी भी हमारी भी उस चित्रकला का स्मरण करते हैं कि नहीं, कब वो अवसर होगा कि भूत मगुर सुगंधम मूर्ध धासित कदानु, अपनी अगुर से भीगी हुई भुजा को हमारे माथे के ऊपर वे रखें। श्री सुखदेव कह रहे हैं ऐसे कहते कहते श्री प्रिया जो विरह विकल हुई उद्धव जी बड़ा भारी ज्ञान की पोथरी अपने साथ लेकर के आए थे, परंतु वो ज्ञान की पोथरी न जाने कहां रह गई। ज्ञान बजाई दुगडगी और प्रेम बजाय और ढोल और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ये प्रेम लपेटे अटपटे वचन उद्धव ने जिसमें सुने, उद्धव का वो संपूर्ण ज्ञान वो बेजा ने कहां बह गया सब धुल गया है, और उद्धव जी स्तुति करते हुए बोले ये 10 पद्यों को जिसमें सुना, इन 10 पद्यों को सुनकर के श्री उद्धव स्तुति करते हुए बोले कि आहा अहो लीलम स्वपूर्णार्था, बोले आहा आप सब वास्तव में परम परम धन्य है। यदि पुरुषार्थ की परम परिपूर्णता कहीं विद्यमान है तो पुरुषार्थ की परम परिपूर्णता प्रेम में है, और प्रेम की परिपूर्णता यदि कहीं विद्यमान है तो वो प्रेम की परिपूर्णता श्री राधिका मालनाक्ष महाभाव में ही विद्यमान है। अहो यूयम स्वपूर्णार्था, आहा आप सब परम परम धन्य होकर के विराजमान, लोग पूजित होकर के विराजमान। मुझे पता नहीं था, मैं तो बड़ा अभिमान धारण किए हुए था कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरे समान कोई श्याम सुंदर का प्यारा नहीं है, पर यहां पर आकर के पता लगा कि आहा आप ब्रज गोपिकागणों की चरण रज का आश्रय ग्रहण किए बिना रस की पद्धति को जाना ही नहीं जा सकता। आप ही वास्तव में कृष्ण को आकर्षित करने वाली जो विद्या प्रेम विद्या उसकी परम गुरु होकर के विराजमान हो। आहा आप पूर्णार्थ हो, इस प्रेम के अतिरिक्त जैसा प्रेम आपके विद्यमान इससे बढ़कर के कोई दूसरा पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता है। वासुदेव भगवती यस्याम इत्यर्पितम मनः, बोले आज यासाम आप ब्रज गोपिकागणों का श्री श्याम सुंदर में जो मन लगा हुआ है वो मन इस प्रकार से अपूर्ण रूप से लगा हुआ है। आहा इन ब्रजवासियों के भाग्य का क्या निरूपण किया जाए। यहां पर जो भी दान किया जा रहा है वह दान भी भक्ति को ही देने वाला है। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमय श्रेयो भी विविधाम्य कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय इनके द्वारा प्रेम की प्राप्ति यही साध्य है। दान कौन सा? वो सबसे बड़ा दान है कृष्ण नाम कृष्ण संबंध प्रदान करना। उन श्री गुरुदेव के श्री शरणारविंद की कौन वंदना कर सकता है, उनकी महिमा का कौन गायन कर सकता है, अपनी वाणी के द्वारा वंदना करते हुए इनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। जिन्होंने कृपा करके श्री कृष्ण के साथ में हमारे संबंध को जोड़ा। दान क्या है? वो सबसे बड़ा दान है जिन्होंने कृपा करके मंत्र दान प्रदान किया। उनसे बेहतर के कोई दाता नहीं हो सकता है। दाता कौन? बोले भूरदा यदि होकर के विराजमान है तो भूरदा वे हैं जो कृष्ण लीला का श्रवण कराते हैं। भूरदा वो है जो कृष्ण के साथ में संबंध का दान करते हैं। तब कथामृतम तस्य जीवनम, हमारे श्री महाप्रभु श्री प्रतापरुद्ध महाराज को भूरदा भूरदा कहते आलिंगन कर लेते हैं, भूरदा भूरदा कहकर के आलिंगन कर रहे हैं। जो कृष्ण लीला कथा का श्रवण कराए, श्री कृष्ण माधुरी का जो आस्वादन प्राप्त कराए, उससे बढ़कर के कोई दाता नहीं हो सकता है। भूरदा जन तो दान व्रत कौन से? बोले इन वैष्णवों के व्रत, इन व्रजवासियों के व्रत हैं श्री एकादशी व्रत। यही एकादशी व्रत, एकादशी व्रत का दान व्रत, दान जो है उसका फल श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही है। श्री गुरुदेव दान करके, मंत्र का दान करके कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की प्रीति के लिए ही वे मंत्र दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो शास्त्र की परंपरा है, श्री कृष्ण की अपूर्व जो उदारता, कृष्ण भक्ति का जो दान, वो कृष्ण भक्ति का दान करके कृष्ण की ही सेवा करते हुए वे विराजमान हैं। दान व्रत, व्रत है एकादशी व्रत वैष्णव, उन एकादशी व्रत का भी परम फल श्री कृष्ण प्रेमी है। दान व्रत तपो हो, तप कौन सा है? बोले यहां पर श्री कृष्ण नाम का जप ये ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। श्री कृष्ण के लिए अन्य जितने भी तप, उन सबों का तप माने तपाना, जहां पर कृष्ण विराही विरह आरती वही तप होकर के विराजमान। तो जिन्होंने उस विरह आरती को, उस ताप को प्रदान किया, दान व्रत तपो होम, होम या यज्ञ, यज्ञ कौन सा? बोले यज्ञों में मुख्य यज्ञ है नाम यज्ञ। नाम यज्ञ जो है वही मुख्य यज्ञ होकर के विराजमान है। तो दानव्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयम जप और स्वाध्याय कृष्ण लीला का निरंतर निरंतर अनुभव कृष्ण लीला का लीला परक ग्रंथों का जो गायन करते हुए स्वाध्याय करते हुए ही विराजमान इन ब्रजवासियों का तो ये स्वभाव ही है कि दानव्रत तपो होम जप स्वाध्याय कृष्ण लीला पर ये सामान्य अर्थ में नहीं विष्णु चतुर्थी दान का अर्थ दीक्षा दान कर रहे हैं दीक्षा कर रहे हैं व्रत का अर्थ एकादशी व्रत कर रहे हैं तप का अर्थ कृष्ण के लिए भोग त्याग यही सबसे बड़ा तप है कृष्णार्थ भोग त्याग यही तप है दान व्रत तपो होम जो जितने भी यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ जो है वही प्रधान है नाम यज्ञ जो है वही प्रधान है स्वाध्याय कृष्ण मधुर लीला उनका ही अध्ययन श्रीमद् भागवत आदि उनका ही अध्ययन इनमें ही ये ब्रजवासी सर्वदा सर्वदा विराजमान श्रेयो भी विवरित चांदी और अन्य अन्य ब्रजवासियों की जितने भी श्रेय कर्म उन सबों के द्वारा कृष्ण भक्ति ही साध्यते ये सब है साधन और कृष्ण में प्रीति यही है साध्य साधन भक्ति का परम फल प्रेम लक्षणा भक्ति ही है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम तब साध्य न है कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है कभी वो साध्य नहीं है श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराए उधर श्रवणादि जो शुद्ध चित्ते हैं उनमें प्रेम साधन भक्ति के द्वारा श्रवणादि भक्ति के द्वारा प्रेम का उदय होगा श्रवण का त्याग नहीं होगा साधन उसे कहते हैं जहां पर फल की प्राप्ति होकर के उपाय का त्याग कर दिया जाए रसोई बन गई प्रेशर कुकर चूल्हा करछी रसोई बनाने की सनासी इन सब का त्याग कर दिया जाए और केवल भोग को ठाकुर को समर्पित किया जाए तो भोग हो गया साध्य अन्य वस्तुएं जिनका त्याग किया जाए वे हो गई साधन साधन उसे कहते हैं जिसका त्याग हो परंतु तो हर भक्ति में श्रवणादिक कभी भी त्याग नहीं है यहां पर साधन अवस्था में भी श्रवणादिक विराजमान साध्य अवस्था में भी श्रवणादिक विराजमान अतः कृष्ण भक्ति ही साध्य थे श्री कृष्ण प्रेम नित्य शुद्ध है वो कभी भी साध्य नहीं है दूसरी वस्तुओं के द्वारा प्राप्त नहीं है पहले उसमें आस्वाद की प्राप्ति नहीं हो रही थी बाद में आस्वाद की प्राप्ति होने लगी और इन ब्रजवासियों का श्री किशोरी जी से तो विशेष रूप से कह रहे हैं आपका तो कहना क्या जहां पर कृष्णार्थ अखिल चेष्टा आप में विराजमान है कृष्ण भक्ति ही साध्य थे श्री कृष्ण में ही प्रीति ही परम परम साध्य होकर के विराजमान भगवत प्रतम श्लोक भवती भी अनुत्तमा भक्त प्रवर्तिता दृष्टिया मुनि नाम अति दुर्लभा आपका श्री कृष्ण में वो प्रीति जो विराजमान है जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है बड़े मंगल की बात है कि आपने सब कुछ त्याग करके श्री कृष्ण नामक उस पर पुरुष का ही परम पुरुष का ही सेवन किया है परम पुरुष का ही ध्यान किया है श्री कृष्ण से बढ़कर के कोई और पुरुष हो ही नहीं सकता है पुरुष किसे कहते हैं बुलपुर के भीतर जो शयन करे उसका नाम पुरुष जीव को पुरुष इसलिए कहा जाता है कि ये देह जो है वो है एक पुर उसके भीतर जो शयन करे उसका नाम पुर पुरुष परम पुरुष कौन है बोले संपूर्ण ब्रह्मांड में जो शयन करे संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अधीश्वर होकर के विराजमान वही है परम पुरुष पुरुष का जो प्रतिपाद्य हो सकता है वही है पुरुषार्थ जीव के द्वारा जो वस्तु फल रूप में प्राप्त की जाए वही है पुरुषार्थ और यदि पुरुषार्थ का विचार किया जाए तो पुरुषार्थ प्रेम ही सिद्ध होगा श्री श्याम सुंदर प्रेम के द्वारा स्वयं भी पोषित हो रहे हैं प्रेम के द्वारा जगत को भी पोषित करते हुए विराजमान है अतः प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ होकर के विराजमान है तो सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे आपने श्री कृष्ण में सर्वात्म भाव स्वीकार किया हुआ है अधोक्षज कौन बोले जिनके माधुर्य के आगे इंद्रियों का वश न चले इंद्रियों के ज्ञान को भी जो छोटा कर दे परंतु अधोक्ष शब्द का हमारे ब्रज में अर्थ है अन्न कन्हैया जब छोटे थे पलना में शयन कर रहे थे मैया ने पलना को काड़ा के नीचे लगा दिया جائے وہ جاتی ہے, گارا کے نیچے پلنا لگا ہوا تھا, اتنے میں ہی ایک شکٹ نام کر کے اثر آیا. اس نے من میں وچار کیا کہ پوتنا ویش دھارن کر کے روپ دھارن کر کے آئی تھی, اس لیے ماری گئی پکڑی گئی. میں ویش دھارن کر کے نہیں جاؤں گا, میں اروپ بن کر کے جاؤں گا. تو وہ اس گارا میں پرویش کر گیا, اس شکٹ میں پرویش کر گیا. من میں وچار کیا کہ شکٹ میں پرویش کر کے پلنا میں جو بالک سو رہا ہے اس بالک کو کچل کر کے سماپت کر دوں گا. تو گارا میں پرویش کر کے گارا کو نیچے دبانے جو پرارمبھ کیا, شری کرشن نے رودن کرتے کرتے گارا میں جرا سی چرن کی لات کا پرہار کر دیا, چرن کا پرہار کر دیا. گارا پلٹ کر کے دور گر گیا, آٹ کرتے ہوئے سارے گھی تیل کے جتنے بھی برتن تھے سب پھیل گئے. سارے بجواسی دوڑے, بولے ارے ہر بالک کا کہیں انشٹ نہیں ہو گیا ہو, انشٹ نہیں ہو گیا ہو. پرنتو سب نے دیکھا کہ گارا الگ پلٹا ہوا ہے, پرنتو لالا کنہیا آنند پورک پلنا میں کریا کر رہے ہیں. سب نے بجواسی بولے ادھو کھجا ادھو کھجا ادھو کھجا. گارا کے اکشی کے نیچے ایکسل کے نیچے بالک جی گیا, جی پڑا جی پڑا. اس سے کنہیا کا نام ہو گیا ادھو کھج. یہ رسم جو ادھوکشن کا نام ہے وہ جہاں پر شری کرشن جو ہے وہ اکش کے نیچے جی گئے, اتوا جہاں پر جتنے بھی اندری جنیہ گیان ان اندری جنیہ گیانوں کو بھی جو پیچھا چھوڑ گئے ان کا نام ادھوکشن. تو آج شری کرشن میں ادھوکشن میں آپ کا یہ اپورو پریتی ہے. آہا آپ کے برہ شری کرشن کو برہ اتپن ہوا اور برہ میں انہوں نے مجھے یہاں بھیجا, یہ میرے اوپر بڑا بھاری انگرہ کیا ہے. برہ مہابھاگا مہان میں نگرہ کرتا, آپ کا اس روپ درشن کر کے میں کرت کرتی ہوا, میرے اوپر بڑا بھاری انگرہ ہوا. شری شام سندر نے آپ کے لیے سندیش بھیجا ہے. شری کشوری جی بولی, سبری گوپی بولی, اس میں گوپی گانے بھی آ گئی, سب بولی. بولے ارے ہم بھاگیشالی کہاں, بھاگیشالنی ہوتی تو پیارے ہم کو چھوڑ کر کے کیوں چلے جاتے. بول نہیں نہیں شام سندر کی تم میں ہی انمت پریتی لگی ہوئی ہے. شام سندر نے یہ پترکا تمہارے لیے بھیجی ہے, اس پترکا کو لے کر کے میں آیا ہوں, اس پترکا کو آپ شرون کیجیے. تو پترکا شام سندر کی برج گوپ کاغذ کو شری ادھو جی نے سنائی. شری بھگوان واچ, یہ جو وچن ہے شکدیو جی کے نہیں ہے, یہ وچن ادھو جی کے. اس پترکا میں شری کرشن یہ کہتے ہیں, یہ ادھو کے وچن ہے. شری شام سندر اس پترکا کے دوارا اب پریاگروں سے پرارتھنا مدرا میں پریاگروں سے پریم کی پرارتھنا کر رہے ہیں, ان کے گرہ کو شانت کر رہے ہیں. کل کے پرسنگ میں شام سندر کی یہ پترکا اور ادھو جی جیسے برج گوپتاگروں کی وندنا کریں گے, اس کا ورنن کریں گے. کل یہاں کے اس پروچن کے کرم میں تھوڑا سا انتر ہے, سمے میں انتر ہے. وہ یہ کہ جیسے ابھی شری بھرمرویت پرسنگ پورو ستروں میں شری شکدیو جی راجہ پریکشت مہاراج کے سنمکھ شری پریاگروں کے پریم کا ادھو اور پریاگروں کے سمواد کے انترگت نروپن کرائے, ان میں کل کے پرسنگ میں یہ نروپن کرائے تھے کہ شری کشوری جی اپنے محل میں براجمان ہو کر کے ماننی سوروپ دھارن کر کے شری کرشن برہ میں اپورو روپ سے دیوی انماد دشا میں اوستھت ہو, دس چتر جل کو بچنوں کے دوارا اپنے ہرے کے بھاو کو پرکٹ کر رہی تھی. شام سندر کی کبھی اکشلتا کا ورنن کرتے ہوئے مان میں, کبھی پیارے کے شام سندر کے چت کی کٹورتا کا نروپن کرتے ہوئے, کبھی بھورا اڑ کر کے چلا جائے تو اتنت اتنت سوئم ویاکل ہو جائیں پھر سے بھورے کا سواگت کرتے ہوئے, کبھی کشل پرشن پوچھتے ہوئے شری شام سندر سے اپنے ہرے کے بھاو प्रकट कर रही थी उस भौरे के माध्यम से, भ्रमर के माध्यम से। उद्धव जी अपने साथ में बड़ी भारी ज्ञान की पोथी लेकर के आए थे, परंतु वो ज्ञान की पोथी सब बह गई। मन में विचार कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, बोले हे श्री ब्रज गोपीनाथ हो, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आह, श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया, जो आपके इस विरह दशा का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किया है। आह, आप ही पूर्ण अर्थवाली होकर के विराजमान, आज मैं कह सकता हूं कि जो प्रीति आप में विराजमान है, ऐसी प्रीति मथुरा में, पुर में किसी भी अन्य प्रिया को प्राप्त है ही नहीं। आप ही पूर्ण अर्थ प्राप्त होकर के विराजमान है, लोग पूजनीय होकर के विराजमान है। इन ब्रजवासियों की महिमा का क्या निरूपण किया जाए, जिनके सारी चेष्टाएं दान वृत्त तप होम ये सब कृष्ण के लिए ही हैं। इन सारे कर्मों का फल कृष्ण ही, कृष्ण भक्ति ही है। आप में वो दुर्लभ प्रीति विराजमान है, जिन्होंने देह स्वजन धर्म का भी त्याग करके श्री कृष्ण की स्मृति की है, कृष्ण की ही प्रेम सेवा करते हुए विराजमान है। सर्वात्म भावोधिकृत भवती नाम अभोक्ष विरहे महाभागा महान मेलुग्रह कृत। हे महाभागाओ, आप में सर्वात्म भाव विराजमान है। सर्वात्म भाव का तात्पर्य है कि कण कण में आप अपने प्रिय के स्वरूप का ही दर्शन कर रही हैं। ये बात मैंने देख ली कि वृंदावन में कोई भोरा आ रहा है और भोरे को भी प्यारे का दूध समझ करके उससे भी टेढ़े वचन कह रही हैं। ये सर्वात्म भाव आप में सहज में प्रेम के कारण ही उत्पन्न हो गया है। श्री कृष्ण में आपकी ऐसी प्रीति, श्याम सुंदर आपके अधीन होकर के ही विराजमान है। उन्होंने बड़ा अनुग्रह किया जो मुझे भी यहां भेजा। सारी गोपी बोले यदि हमारे ऊपर कृष्ण की प्रीति ही होती हमसे, तो प्यारे हमको छोड़ करके क्यों जाते। उद्धव जी को मन में विचार आया, ये ठीक अवसर है, इस समय इनको बहिर्ज्ञान है। इस समय श्याम सुंदर के संदेश पत्र को जो मैं लाया हूं, उस पत्र का को इन प्रियागरों के सामने यदि प्रस्तुत किया जाए तो ये सुंदर अवसर होगा उस पत्रिका को इन प्रियागरों को देने का। तो उद्धव बोले, अब यहां से प्रसंग शुरू हो रहा है आज का, कि श्रूयताम प्रिय संदेश भवती नाम सुखाव यम आदायागतो भद्रा अहम भरतू राज कर। बोले हे प्रियागरों, आप अपने प्रिय के संदेश को सुनिए, जो आपको अपूर्व रूप से सुख प्रदान करेगा। इस संदेश को लेकर के मैं यहां पर आया हूं। श्याम सुंदर का राष्ट्रीय दूत बनकर के, एकांती दूत बनकर के आपके पास में मेरा आगमन हुआ है, आप श्याम सुंदर के संदेश को सुनिए। तो ऐसा कहकर के पत्र का उद्धव ने खोली और श्री उद्धव उस पत्रिका को सुनाते हुए कह रहे हैं कि इस पत्रिका में श्री भगवान को वाच, श्री भगवान ये कह रहे हैं कि भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायग्ने जलम मही तथा हम च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। श्री उद्धव ने जो पत्रिका भी सुनाई है, इस पत्रिका में तीन प्रकार के अर्थ प्रकट हो रहे हैं। पहला अर्थ है ज्ञान परक अर्थ। ये ज्ञान परक अर्थ अज्ञानी पंडितम मन्य मंद बुद्धि वालों के लिए आदरणीय यह अर्थ है। वे मंदबुद्धि अज्ञानी जन ये समझते हैं कि संसार के ताप को दूर करने का उपाय ज्ञान ही है। श्रीमद् भागवत संहिता मोहिनी रूप में विराजमान है, जैसे मोहिनी भगवान दैत्यों के सामने ये कहते हैं कि दैत्यों तुमको विमोहित होने की, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे हाथ में जो अमृत है ये अमृत तुमको ही मिलेगा, मुझे कहते हैं परंतु अमृत चलाते नहीं है। मोहिनी भगवान अपने हाथ में अमृत लिए हैं, दैत्यों की ओर केवल मुस्कुरा करके देख रहे हैं परंतु दैत्यों को अमृत चलाते नहीं है। अमृत चलाते कौन को है? बोले जो अधिकारी देवता है उनको ही अमृत चलाया जाता है, दैत्यों से तो केवल मीठी मुस्कान मीठी मीठी बातें मात्र की जाती हैं, कटाक्ष से उनको देखा जाता है, उनको विमोहित किया जाता है पर उनको अमृत का दान नहीं दिया जाता। ऐसे ही श्री श्रीमद् भागवती संहिता यह जो पंडित मन है, जो मंदबुद्धि है, उन मंदबुद्धि वालों को केवल यह दिखाती है कि श्रीमद् भागवत का तात्पर्य ज्ञान और मोक्ष में है, जबकि श्रीमद् भागवत का तात्पर्य ज्ञान मोक्ष में नहीं है। श्रीमद् भागवत की संहिता मोहिनी भगवान का रूप धारण करके वास्तविक प्रेम सेवा रूपी जो अमृत है, उस प्रेम सेवा भजन प्रेम भजन रूप अमृत को तो छिपा लेती है और अज्ञानियों को जो ज्ञानमन्य है उन ज्ञानमन्यों को केवल मोक्ष श्रीमद् भागवत के द्वारा प्राप्त होता है, वो ज्ञान का मार्ग ही केवल बता देती है। श्री कृष्ण के ये वचन भी अज्ञानियों को विमोहित करने वाले हैं कि देखो ज्ञान की कितनी महिमा है कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रियाओं के लिए ब्रज गोपिकाओं के लिए भी ज्ञान का उपदेश दिया और ज्ञान का उपदेश ग्रहण करके उन गोपियों का विरह ताप दूर हो गया, परंतु ये तात्पर्य नहीं, ये एकदम बहिरंग अर्थ है। ये मोहिनी भगवान के स्वरूप में श्री कृष्ण के वचन केवल अज्ञानियों को मोह में डाल रहे हैं, ये असुर व्यामोह लीला मात्र है। इसको एक आचार्य ने इसके लिए एक शब्द दिया असुर व्यामोह, केवल असुर जनों को विमोहित करने का यह एक उपाय मात्र है। दूसरा जो अर्थ है वो है प्रेम की महिमा को स्थापित करने वाला। श्री कृष्ण के इन वचनों के द्वारा ये भी सिद्ध हो रहा है कि आप प्रेम ऐसी महनीय वस्तु है कि श्री कृष्ण ने स्वयं ने ज्ञानोपदेश प्रदान किया, पर ज्ञानोपदेश देने पर भी लोग गोपियों ने ज्ञानोपदेश को नहीं माना और उन्होंने कृष्ण की प्रीति को ही भजन सेवा प्रेम भजन को ही बड़ा करके माना और ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करके या आत्मा और जीव की एकता ब्रह्म और जीव की एकता को स्वीकार करके भी विराजमान नहीं हुई, बल्कि उन्होंने प्रेम को ही प्रधान करके माना और उद्धव जितना भी योग और ज्ञान लेकर के आए उस योग और ज्ञान को गोपिकागणों ने खंडित कर दिया, लौटा दिया, उसकी अवज्ञा कर दी। आहा प्रेम इतनी महंगी चीज है, ये विद्वजनों के लिए कहा, ये दो बात तो दूसरों के लिए थी। और तीसरी जो बात, तीसरा जो अर्थ है वो अर्थ है श्री श्याम सुंदर का स्वयं अपने लिए। श्री श्याम सुंदर अपने हृदय के भाव को व्यक्त करते हुए श्री प्रियागणों के सामने प्रार्थना मुद्रा में प्रियागणों को धैर्य प्रदान कर रहे हैं। ये जो पत्र है इस पत्र का मुख्य जो तात्पर्य है वह गोपिकागणों के विरह को प्रार्थना मुद्रा में दूर करना, अपने निज के प्रेम को प्रियाओं के सामने आपने प्रकट किया है। इन तीनों अर्थों को प्रकट कर रहे हैं श्याम सुंदर पत्रिका में। बोले गोपियों भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, ज्ञान पर अर्थ कर रहे हैं। इसे ऊपर से ऊपरी जो अर्थ है वो प्रकट हो रहा है। बोले गोपियों मैं अंतर्यामी हूं, मैं सर्वाश्रय हूं, मैं अभिन्न निमित्त उपादान होकर के विराजमान हूं, और यदि मैं अभिन्न निमित्त उपादान हूं तो मुझसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। सर्वाश्रय होने के कारण मुझसे भिन्न कहीं दूसरी जगह कोई वस्तु स्थित हो ही नहीं सकती है, अतः मुझसे भिन्न कोई वस्तु कभी है ही नहीं, मैं ही सर्वाश्रय होकर के विराजमान। और जो वस्तु सर्वाश्रय है वह कभी दूर तो हो ही नहीं सकती, आप लोगों के साथ में मेरा वियोग नहीं है। इस ज्ञान दृष्टि को यदि धारण कोई करे तो उसे संसार के कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। वो ये विचार करेगा, एक ज्ञानी कि यदि कहीं कष्ट प्राप्त हो रहा है तो वो देह को प्राप्त हो रहा है, कष्ट यदि दिया जा रहा है तो देह ही कष्ट प्रदान कर रहा है, आत्मा उससे असंपृक्त होकर के विराजमान उसको कष्ट थोड़ी है। जैसे एकादश स्कंद में दुखी गीत का वो प्रसंग है, अब वहां पर नायम जनों में दुख दुख हेतु न देवत आत्मा ग्रह कर्म काल मन परम कारण मापनती संसार चक्रम परिवर्तित। अब वो जो भिक्षुक है ज्ञानी भिक्षुक, वो ज्ञानी भिक्षुक मन में विचार कर रहा है कि नायन जनों में सुख दुख हेतु ये जीव अपने आप को दुख नहीं दे रहा है, जीव ने यदि सुख अपने आप को ही दुख दिया तो जैसे अग्नि का ताप अग्नि को प्राप्त नहीं होता ऐसे मेरा ताप मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। देवता भी सुख दुख नहीं देंगे क्योंकि इंद्रियों में भी तो देवता विराजमान है। यदि कोई ये कहे कि किसी ने हाथ में डंडा लेकर के किसी का सिर तोड़ा तो ये भी तो कहा जा सकता है कि हाथ का देवता है इंद्र, सिर का देवता है प्रजापति, इंद्र ने प्रजापति को मारा होगा, मुझे थोड़ी मारा है। न देवतात्मा गुण कर्म काल है, सुगुणात्मक मैं भी हूं, सुगुणात्मक दूसरा भी है। एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा है तो त्रिगुणात्मक देह त्रिगुणात्मक देह को मार रहा है, कोई आत्मा को थोड़ी मार रहा है। काल यदि दुख देने वाला है तो काल भी भगवान की शक्ति है, जीव भी भगवान की शक्ति है, भगवान अपनी ही शक्ति से अपने आप को क्यों दुख देंगे? इसलिए शक्ति शक्ति को दुख दे रही है, आत्मा को दुख नहीं है। यदि ये कहा जाए कि देह दुख देने वाला है तो ये बात तो बिल्कुल वैसे ही हुई कि कभी अपने ही दांतों से अपनी जीव कट जाए तो दांत को तोड़े कि जीव को मरोड़े। तो देह ने देह को कष्ट दिया, इसलिए मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मन परम कारण मामनंती, मन ही सुख दुख का कारण है। जो संसार चक्र को चला रहा है, जीव ने भगवान की माया से विमोहित होकर के भगवान की जो त्रिगुणात्मिका माया, उस त्रिगुणात्मिका माया की दो वृत्तियां हैं, एक वृत्ति है जीव माया, एक वृत्ति है गुण माया, यथा भासो यथा तमः। उनमें जीव माया जो है उसके उसकी दो वृत्तियां हैं, एक आवरण और एक विक्षेप। जैसे एक जादूगर अपने हाथ में लोहे का कड़ा पहने हुए है और अपने हाथ से लोहे के कड़े को निकालता है, मजमा इकट्ठा करके सबसे कहता है कि तुम देखो लोहे का कड़ा है ना, चार आदमियों को दिखाता है और फिर कुछ मनी मन में मंत्र सा पढ़ता है छू मंत्र और कहते आकाश में उस कड़े को उछालता है और तप देसी उसके हाथ के ऊपर एक सोने का सिक्का आकर के टिक जाता है। अब जादूगर ने दो काम किए, जादूगर ने एक काम किया कि उस कड़े के लोहे के रूप को छपाया और दूसरा काम यह किया कि उसने उस लोहे के कड़े में सोने की भ्रांति करा दी। इसी प्रकार भगवान की त्रिगुणात्मिका माया की जीव माया वृत्ति जीव के सच्चिदानंद रूप को तो आवृत करती है और जीव को ये अध्यास या भ्रम उत्पन्न करा देती है कि मैं मन हूं, ये मनोध्यास की प्राप्ति करा देती है। और मन जिस स्थूल शरीर को मैं ममता बुद्धि कर लेता है उस स्थूल शरीर का जन्म हो जाता है, पहले मनोध्यास की प्राप्ति होती है और मनोध्यास के बाद में फिर देहाध्यास की प्राप्ति हो जाती है। मन जिस देह में घुसा उस देह को ही वो अपना करके मानने लगता है, उसे देहाध्यास की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान की माया शक्ति के द्वारा, माया शक्ति की भी जीव माया जो वृत्ति है, आभास रूप जो वृत्ति है, उस आभास रूप वृत्ति के द्वारा जीव को भ्रम की प्राप्ति हो रही है। भगवान ने अपनी त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा संपूर्ण जगत को परिणत किया, जगत है भगवान का परिणाम, जीव को मैं देह हूं यह है अध्यास की प्राप्ति। भगवत सर्वानंद का आश्रय करने पर ये अध्यास निवृत्त हो जाएंगे और वो मन में विचार करेगा कि ना हम विप्रो न नरपति नो यकर्वा, मैं विप्र श्री महाप्रभु जैसे आज्ञा करते हैं कि मैं विप्र नहीं हूं, मैं नरपति नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं कौन हूं? बोले राधा भर को पद कमल और दास दासान दासा, ये स्वस्वरूप जो है उस स्वस्वरूप की उसको प्राप्ति हो जाए। तो जो वस्तु सर्वाश्रय होकर के विराजमान, भगवान ने ही अपने आप अपनी त्रिगुणात्मिका माया के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया है, त्रिगुणात्मिका माया के रूप में अपने आप को प्रकट किया है, परिणत होकर के विराजमान। हम वैष्णव सब शक्ति परिणाम मानते हैं, जगत को ईश्वर का अभ्यास नहीं मानते, भ्रम नहीं मानते, भ्रम के कारण उत्पन्न नहीं मानते हैं कि रज्जु में सर्प की भ्रांति हो गई हो, ऐसा नहीं मानते हैं, बल्कि हम जगत का परिणाम मानते हैं। और परिणाम का तात्पर्य है कि जैसे दूध ही दही रूप में परिणत होता है, सतत्वतः जो अन्यथा प्रथा है उसका नाम परिणाम है। श्री प्रभु ही माया शक्ति के द्वारा जगत रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। भगवान के अतिरिक्त तो कोई वस्तु है ही नहीं, सर्वम खलिदम ब्रह्म है। उनके अतिरिक्त तो बिना तो साथ वस्तु परम वाच्यम, उनके बिना तो कोई वस्तु नहीं है, है ही नहीं। तो जब वे माया शक्ति के द्वारा जगत रूप में परिणत होते हैं, उसी का नाम जगत परिणाम है, माया परिणाम है। तो जगत भगवान का माया परिणाम होकर के विराजमान है। जब माया स्वतंत्र शक्ति नहीं है, भगवान का ही अंश है, तो भगवान कह रहे हैं भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, आपके साथ में मेरा कभी वियोग हो ही नहीं सकता है। यथा भूतानुभूतेषु खम्भायग्ने जलम वही, जैसे जितने भी पंच महाभूत हैं, वे पंच महाभूत अलग भी दिखते हैं और वे पंच महाभूत पंचीकरण प्रक्रिया के अनुसार सब में व्याप्त भी दिखते हैं। क्योंकि वेदांत की जो पंचीकरण प्रक्रिया है उसमें ऐसा माना गया कि पृथ्वी जल वायु तेज आकाश ये अपने अपने पांच पांच हिस्से करते हैं, और पांच पांच हिस्से करके एक हिस्सा तो रखते हैं अपने पास, और बचा हुआ जो एक बटे पांच हिस्सा है वो शेष जो चार है उन शेष चारों को बांट देते हैं। ऐसे सभी वस्तुएं अपने हिस्से के पांच पांच हिस्से करके पंचीकरण प्रक्रिया में एक बटे पांच दूसरों को देते हुए चली जाती हैं, और अंत में आते आते पृथ्वी तक आते हुए पृथ्वी में सारे गुण आ जाते हैं। आकाश में चलो शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श दो गुण आ जाते हैं, शब्द स्पर्श। अब तेज अग्नि जब उत्पन्न होती है तो अग्नि में दो की जगह तीन गुण आ जाते हैं, शब्द स्पर्श और रूप तीन गुण आ जाते हैं। जब जल आता है तो जल में फिर चार गुण आ जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप और रस। पर पृथ्वी में आते आते पांच गुण जैसे आ जाते हैं। तो वेदांत की प्रक्रिया में पंचीकरण प्रक्रिया में जैसे अपने अपने भाग को उन भूतों ने, उन पंच महाभूतों ने किसी दूसरे को दिया और मिलकर के अंत में पृथ्वी की रचना हुई, और ये पांचों पदार्थ भी मिलकर के पृथ्वी की प्रधानता लेकर के पांचों पदार्थ मिलकर के भी जैसे सारे जगत की रचना करते हुए विराजमान हो रहे हैं, पंच पदार्थों से मिलकर के जैसे पंचीकृत पदार्थों से मिलकर के जगत की रचना हो रही है। ये पदार्थ अलग भी दिखते हैं और सबके भीतर भी व्याप्त हैं। ऐसे मैं आपसे अलग इस समय मथुरा में भी दिख रहा हूं और मैं आपके साथ में भी क्रिया करते हुए विराजमान हूं। श्री भगवान ज्ञान की प्रक्रिया के द्वारा उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि सर्वाश्रय और अंतर्यामी होने के कारण मेरा आपसे वियोग नहीं है। ये तो कहा दूसरे लोगों को बहकाने के लिए, ज्ञानियों को बहकाने के लिए कि देखो ज्ञान ऐसी वस्तु है कि ज्ञान के द्वारा बेरह ताप गोपियों का दूर हुआ, और अंत में ज्ञानी जन ये कहे कि गोप कारण जो है वो आत्मभाव को धारण करके शांति को उन्होंने प्राप्त किया। परंतु ये मुख्य अर्थ नहीं है। द्वितीय जो अर्थ है वो अर्थ ही भक्ति परक अर्थ है। श्री श्याम सुंदर को ब्रज गोपिकागणों से प्रार्थना कर रही है, जैसे रात में श्याम सुंदर ने वंशी बजा करके जिसमें गोपियों को आमंत्रित किया, गोपिकागण विस्तृत वस्त्रावरणा होकर के श्याम सुंदर के पास में आई, पहनने के वस्त्र जिन्होंने ओढ़ रखे हैं ओढ़ने के वस्त्र पहन रखे हैं। श्री श्याम सुंदर ने मन में विचार किया कि गोपियों के आने के साथ ही साथ यदि इन गोपियों से परिहास प्रारंभ कर रास प्रारंभ कर दिया जाएगा इनकी उत्कंठा घट जाएगी, इसलिए आपने गोपियों के सामने भीतर प्रार्थना और ऊपर से उपेक्षा में वचन कहे कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण वहा, बोले घरे गोपियों तुम तो पहले से ही महाभागा हो, सारे सुख तुमको मिले हुए हैं, मैं आपका क्या पूरी कर सकता हूं, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है जो आपका पूरी करूं। ब्रजस्या नामेम कश्यत, अरे ब्रज में सब कुशल तो है, क्यों आई हो गुरुतागमन कारण गोपियों, दिल समझ करके आई हो तो रजन्यशा घोर रूपा घोर सत्य निषेवता, ये रात्रि है यहां पर भयानक कहीं जीव जंतु निकल आए, मैं अकेला इतनी सारी गोपियों की कैसे रक्षा करूंगा, घोर सत्य निषेवता भयानक जीव जंतु भी यहां पर हो सकते हैं, इसलिए गोपियों यहां पर मत रहो, प्रतियात ब्रजम घर को लौट जाओ, लौट जाओ। नेह सेम स्त्री विश्व मध्यमा, तुम स्त्रियों का मेरे शरीर के नव युवक के पास में रहना उचित नहीं, मैं तो रात्रि में अपनी किसी इष्ट देवी के ही आराधना करने के लिए, अपने किसी अभीष्ट मंत्र का जप करने के लिए, यमुना पुलिन पर अपनी देवी का ध्यान करने के लिए करते हुए विराजमान हूँ, और तुम सुमध्य में आकर के यदि मुझे घेर करके खड़ी हो जाओगी तो मैं अपनी इष्ट देवी इष्ट मंत्र की आराधना कैसे करूंगा, इससे गोपियों लौट जाओ लौट जाओ। भरत शुश्रूषण स्त्रीणाम परो धर्मो ही माया तद बंधु नाम कल्याण है, पति की सेवा करनी चाहिए यही स्त्रियों का परम धर्म है। गोपी बोले हम तो वृंदावन की शोभा देखने के लिए आई, श्याम सुंदर कह रहे हैं वृंदावन की शोभा यहीं रह करके देखोगे क्या, दृष्टम मनम कुसुमतम, देख ली वृंदावन की शोभा अब जाओ। गोपी को आकाश में चंद्रमा की शोभा का दर्शन करने लगी, बोले ये चंद्रमा तो खिला हुआ है, अपने घर की छत के ऊपर खड़ी होकर के चंद्रमा का दर्शन करना, दृष्टम मनम कुसुमतम राकेश कर रंजितम, अब चंद्रमा से दृष्टि हटा करके